सूरत अल हज आयत नंबर 73 और उससे आगे। या अय्युहन्ना सुदुरिब मसलुन फस्तमेउ लहु इन्नल्लज़ीना तदउन मिन दूनिल्लाह। ए लोगो, एक मिसाल बयान की जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको पुकार रहे हैं, और या अय्युहन्नास में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इंसानियत। तो गोया के कुरान इंसानियत के नाम रब का पैगाम है। एक मिसाल बयान की जाती है, बस गौर से सुनो। दुरीबा का लफ्ज़ जहाँ आया है, दुआत रौबा इसका रूट है। उर्दू में हम इसको ज़र्ब कहते हैं। ज़र्ब कलीम एक मारूफ़ किताब भी है अल्लामा इकबाल की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मारने की तरफ इशारा। तो लफ्ज़ दरबा तीन मानों में इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में। नंबर एक, मारना, क्योंकि लफ्ज़ ज़र्ब के अंदर मार है। इसी तरह दूसरा मानी होता है बयान करना। हम जब बोलते हैं तो हमारे अल्फाज दूसरों के कानों पे पड़ते हैं, तो इसमें भी एक किस्म के मारने का ही अंदाज़ मिलता है। और तीसरा मानी होता है चलना। तीनों मानी कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं मुख्तलिफ जगह पे, क्योंकि सफ़र में जब हम पाँव ज़मीन पे मारते हैं तो उसमें भी एक किस्म का मार का अंदाज़ होता है। तो अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि बयान की जाती है। दरबा कहने की बजाय दूरीबा कहा गया, जो मजहूल या पैसिव वॉइस है। मतलब क्या है कि कौन बयान कर रहा है इसको छोड़ो, बल्कि जो बात है उस पे गौर करो और अपने लिए इसमें से अमल लो। करो क्या? फस्तमेउ लहू, बस गौर से सुनो इसको। एक लफ्ज़ होता है समेउ, सुनो, और एक लफ्ज़ होता है इस्तमेउ। दोनों का फ़र्क क्या है? समेउ सुनो, बस सुनना, लिसनिंग, लेकिन इस्तमेउ गौर से सुनो। अगर अभी तक पूरी तवज्जो नहीं हुई, अभी भी साथ कोई दूसरे काम कर रहे हो, तो उनको छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का कलाम बंदे को समझ आता ही नहीं है जब तक कि वो दूसरी चीज़ों से बेनियाज होके उस कलाम को सुने। अल्लामा इकबाल के बारे में आता है कि उनके वालिद मोहतरम कहा करते थे कि कुरान पाक को इस तरह से लो कि गोया कि ये तुम्हारे दिल पर नाजिल हो रहा है। होगा तो नबी ही के दिल पर, ये तो ईमान का तकाजा है और फरिश्ता ही लेके आता है। लेकिन हकीकत यह है कि जब भी कभी कुरान पाक को सुनने का, किसी क्लास में बैठने का या कोई लेक्चर सुनने का मौका मिले, हत्तुल बसा अपना दिल, दिमाग और अपने कान उसमें रखा करें। इससे इंशाअल्लाह ताला शिर्क से पाक होते हुए जब हम अल्लाह की बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी एक और बात कि ये क्यों नहीं कहा कि ए लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, पढ़ लो इसको, कुरान में लिखी हुई है, जाओ पढ़ लो, क्योंकि आगे हम पढ़ने ही वाले हैं। तो सवाल क्या है कि ये कहने के बजाय कि फ़क्राउ, पढ़ लो, ये क्यों कहा कि फस्तमेउ लहू, सुनो इसको। इसकी दो वजूहात हैं। पहली बात यह है कि पहले पहल कुरान पाक और अल्लाह के नबी सल्लम की ज़ुबान अथर से जो अल्फाज निकले वो सुनकर ही लोगों तक पहुँचे। लिखने का रिवाज तो साथ साथ ही पढ़ता गया ना, और अल्लाह ताला का कलाम जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बोलकर सुनवाया गया। दूसरी वजह क्या है कि जब बात सुनी जाती है ना तो उसका ज़्यादा असर होता है। जब आप किसी की बात सुनते हैं ना तो उसके अंदर उसके जज्बात होते हैं, एक्सप्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं। बस दफ़ा बात वैसे नहीं समझ आती, लेकिन किसी की ज़ुबान से सुने तो बिल्कुल समझ आती है। आप इसको आजमाना चाहें ना तो आप किसी का लेक्चर सुने जो आपको बहुत अच्छा लगे, आपके दिल पे उसका असर हो, फिर आप उसका एक एक लफ्ज़ लिखें। 10 मिनट की रिकॉर्डिंग को अपने लफ्ज़ों में लिखना शुरू कर दें। अब आप जब उस रिकॉर्डिंग को लिख के दोबारा पढ़ेंगे, जो ही आप पढ़ेंगे आपको वो एक्सप्रेशन याद आ जाएंगे। लेकिन वही जुमले जो आपने लिखे किसी ऐसे बंदे को दीजिए कि जिसने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, और उसे कहें बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत अच्छी थी, लो तुम पढ़ लो, चलो सुनने का मौका नहीं, तो वो पढ़ के कहेगा इस ओके, वो बात ही नहीं बनती। किसी से कहा कि आप कुरान सुन लें, एक बच्चा है तो मैंने उसे कहा कि आप बेटा दौरे कुरान सुने, और हर पारे का उसमें तर्जमा भी और तफसीर भी है। तो उसने सुनना शुरू किया। जब मैंने पूछा कि आपने कितना सुना, तो कहने लगा कि मैंने 10वें पारे से शुरू की है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा खाला मैंने पहले पढ़े हुए हैं, मैंने तर्जमे वाले कुरान से पहले पढ़ लिया मैं 10 पारे, मुझे पता चल गया उसमें क्या है। मैंने कहा खाला के भांजे अब इसको शुरू से शुरू करो। जो तुमने पढ़ा है ना किताब में से, अब तुम उसको रिकॉर्डिंग से सुन के फिर मुझे बताना कि तुम्हें कोई फ़र्क महसूस होता है। तो हकीकत है कि फ़र्क महसूस होता है। लिहाजा कुरान का एक खूबसूरत पैगाम जो है वो सुनने से ही हासिल होता है। आज के दौर में हम इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हैं कि अगर हमारे पास इतना वक्त ना भी हो कि हम इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ सकें, तो किसी का 1 घंटे का लेक्चर सुनना वैसे भी मारूफ बात है कि कई घंटे के मुताले से बेहतर होता है। तो सुनने पे गौर करें। हम लोग यहाँ कुरान की क्लासेस में जब आते हैं तो सुनते हैं, हमारे दिल पे असर होता है इसका? अगर यही किताबें हमारे घरों में दे दी जाएं और हम खुद ही उसको पढ़ना शुरू कर दें, क्या उतना ही फ़ायदा होता है जितना कैसे होता है? तो लिहाजा सुनने की आदत डालें। क्लास के बाद भी घर जब जाते होंगे आप लोग, कभी खाना पका रहे हैं, कभी आप लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं, मुनासिब मौके पे, ये नहीं कि घर वालों को बोर कर दें और हर वक्त यही घर में आवाज़ें आती रहें, लेकिन अगर आप फालतू वक्त जो खाली होता है उसमें कोई लेक्चर प्ले कर लिया करें, कभी तिलावत प्ले करी, कभी दुआएं प्ले की, आप अपने घरों का माहौल बनाएं। आपको पता है कि आज की सोसाइटीज़ में हर वक्त हमारे घरों से आती तो रहती हैं आवाज़ें, कभी खबरों की, कभी ऐसे ही एडवर्टाइज, चले 100 दफ़ा देखी हुई एडवर्टाइज फिर देख रहे हैं, पहले पता होता है अब ये क्या करेंगी, लेकिन फिर देख रहे हैं। हर वक्त हमें आवाज़ों के शहर में डाल दिया, इससे भी हमारी सोच बदल गई। आप आज से 10-15 साल पीछे जाके देखें, घरों के माहौल मुख्तलिफ थे। जब शैतान या बातिल अपनी आवाज़ों को फैला सकता है ऐसे ही बातों के बातों में, तो क्या हम कुरान की आवाज़ों काम नहीं करते? जो लोग कंप्यूटर से थोड़े रिलेटेड होते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि देखें, पेल टॉक तो आपके लिए किस्म का रेडियो स्टेशन है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कभी वहाँ बीच में दुआ प्ले हो जाती है। आपको पता है कि लाइव क्लासेस तो ख़ास वक्तों में हमारी होती हैं, लेकिन उसके बीच में इन बिटवीन बाद सेशंस रिप्ले होते हैं। फिर बीच में जब सुबह का वक्त आता है तो हम सुबह की दुआएं प्ले करते हैं, शाम की दुआएं प्ले करते हैं, जुमे को सूरह कहफ प्ले करते हैं, तो रात को सोते वक्त वहाँ सूरह सजदा प्ले होती है। पिछले शायद 4-5 साल से ये हमारी रूटीन है। फिर सूरत मुल्क प्ले होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, हमारी सुन्नतें छोटी छोटी इस तरह से भी अदा हो जाती हैं ना। कोशिश किया करें कि चला दें, आप नहीं सुनेंगे शायद कोई दूसरा सुन ले। बहरहाल फस्तमेउ लहू, गौर से सुनो, दिल दिमाग को खोल कर सुनो, क्योंकि मिसाल बड़ी अहम है। क्या इन्नल्लज़ीन तदउन मिन दूनिल्लाही लन यखलुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू, बेशक जिन माबूदों को तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, ये तो मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, अगरचे वो सब जमा हो जाएं इस मामूली से काम के लिए। ये तो है पहली सूरत। और इससे भी बढ़कर देखो ज़रा इनकी बेबसी कि वहीं यसलुप हुमुज़ुबाबु शैयन, और अगर छीन ले उनसे मक्खी कोई भी चीज़, ला यस्तन्क़िज़ुहु मिन्हु, तो वो तो उसको छुड़ा भी नहीं सकते उस मक्खी से। दाफ़ अत्तालिबु वल मतलूब, आह कितना बेबस है ऐसा तालिब और कितना बेबस है ऐसा मतलूब। और ये सब होता कब है? अल्लाह को छोड़कर गैरों को इंसान कब पूछता है? वो बुत हों या वो बुज़ुर्ग हों या वो गैर अल्लाह की कोई भी सूरत हो, ये होता कब है? जब मा कदरुल्लाह हक्का कदरी, जब लोग अल्लाह की कदर नहीं पहचानते, ना कदर पहचानी उन्होंने अल्लाह की जैसे कि इसकी कदर पहचानने का हक था। इन्होंने सोचा कि शायद अल्लाह ताला पुराना हो गया, अल्लाह ताला बूढ़ा हो गया, छोड़ो कमज़ोर हो गया। जैसे माँ बाप जब तक काम करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, बच्चों की नज़र में वो बड़े अहम होते हैं, जब माँ बाप कमज़ोर होते हैं तो फिर खिदमत उनकी होती है लेकिन मोहब्बत कम होने लगती है, या रहम के जज्बात के साथ उनकी खिदमत होती है, तो कहा कि अल्लाह की ज़ात में तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि इन्नल्लाह लक़वीयुन अज़ीज़, बेशक अल्लाह ताला बड़ा ताकतवर और सब पर ग़ालिब है। इतनी खूबसूरत ये मिसाल है कि वाकई आप कह सकते हैं कि अरबी लिटरेचर की बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जिस माशरे में इस्लाम का पैगाम शुरू हुआ था, उस दौर के लोगों के लिए वो मुशरिक माशरा था। दो तरह के माबूद थे लोगों के। अगर अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द का माहौल देख लें मक्का का, और उसी पे कियास करते हुए आज के हालात में देखें, तो एक शिर्क की किस्म जो थी वो बेजान बुतों को पूछना था। लोगों ने कुछ नाम बना रखे थे, पंचतन पाक लात मनात उज्जा यौक यगूस नसर, ये पांच बुत थे मक्का वालों के। और असल में पीछे इनकी हिस्ट्री पे जाएं तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के नेक लोग थे। यके बदीगरे जब इनका इंतकाल होता गया तो शैतान आके लोगों को ये पट्टियाँ पढ़ाता रहा कि कल तक तो इनकी बरकत से तुम अल्लाह के अजाबों से बचे हुए थे, इतने गुनाह करते और फिर भी पकड़ नहीं आती, अब क्या होगा, ये तो चले गए हैं। लिहाजा पहले कहा इनकी शबीहें बनाओ, चौक से कोयले से शबीहें बनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा गया कि अच्छा चलो तुम अपने घरों में रख लो। फिर कहा ये तो मिट जाएंगी वक्त के साथ, अब तुम इनको लकड़ी या पत्थर के मिट्टी के चूने के बुतों में डाल लो। फिर बुत बन गए। फिर कहा वैसे ही घर में पड़े हैं, चलो जहाँ बैठ के इबादत करते हो सामने रख लो, मांगना ऊपर वाले से, सिर्फ ये बीच में बरकत के लिए होंगे। अगली नस्लें आईं, उन्होंने उन्हीं बुतों से मांगना शुरू कर दिया। ये एक तवील कहानी है, हम कई जगह इसको डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। तो नतीजा क्या हुआ कि दुनिया में शिर्क फैल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पांच बड़े बुत थे। लात, असल में लात जो था ये लफ्ज़ अल्लाह की तानीस बनाई हुई थी उन्होंने, नाउसुबिल्ला। तानीस कहते हैं फ़ीमेल को, आप कह सकते हैं मिसिस के मानों में। लफ्ज़ अल्लाह से लात थी। लफ्ज़ अलमन्नान से मनात थी उनकी देवी, यानी अल्लाह अलमन्नान है तो नाउसुबिल्ला मिसिस अलमन्नान, बात करते हुए भी ज़बान कांपती है। लेकिन जब शिर्क आता है ना तो अकल पे पट्टी पड़ जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला का नाम अल अज़ीज़, इससे उज़्ज़ा थी। इस तरह की देवियों का रिवाज था, अपने हाथों से बनाते, अपने हाथों से ढालते, उनको नहलाते धुलाते, फिर बाद में उनके तिलक लगा के खुशबुओं में बसा के मंदिरों में ला के रख देते और कहते अब आओ इनसे मांगो। जो अपने नाक पे बैठी मक्खी को नहीं उड़ा सकती उनसे आके मदद मांगते थे, एक किस्म के बुत थे। और आज भी इसको अगर साथ ही रिलेट करें तो आज के दौर में भी दुनिया में इस किस्म की बुत परस्ती कई मज़ाहब में आम है। हिंदुइज़्म में आपको इसकी कई मिसालें मिलेंगी, देवियों के नाम पे कहीं लक्ष्मण, कहीं रीता सीता और कहीं शिव जी और कई नाम है। सिर्फ हिंदू धर्म में आप देखें तो 3 करोड़ माबूदों की पूजा होती है। कोई पीपल के पत्ते को पूछता है, कोई दरख्त को पूछता है, कोई बंदर को पूछता है, हत्ता के लोग तो शर्मगाहों को भी पूछते हैं, क्योंकि ये दुनिया में लाने का सबब बनी। जिससे कुछ फ़ायदा मिला उसको पूज लिया, पता नहीं आजकल फ्रिज एसी और इनके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि ये भी फ़ायदा देते हैं। और किसी ने नुकसान दिया तो उससे डर गए, नाग की पूजा होती है, सांप की पूजा होती है, बिच्छू की पूजा होती है कि नहीं हमें कुछ ना कहना। तो बहरहाल एक ख़ुलासा क्या है कि जब अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत या फ़वाद दूसरों में दिखें तो शिर्क फैलता है। और इसी तरह अल्लाह के खौफ से बेखौफ होकर बंदा इंसानों और इंसान की बनी हुई चीज़ों से डरे तो शिर्क पैदा होता है। ये पहली किस्म थी। दूसरी किस्म का शिर्क जो था उस दौर में भी और आज भी, वो था जानदार हस्तियों को पूछना, अम्बिया कराम को पूछना, फरिश्तों को पूछना, औलिया कराम को पूछना। इसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पूछने की मिसाल नसारा में आम थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना यहूद की आदत थी। मक्का में कुछ कबाइल ऐसे थे, बनू कनाना वगैरह, जो फरिश्तों के बारे में ये गुमान रखते थे कि ये अल्लाह ताला की बेटियां हैं। और आज के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा वसीउल मानी बात हो सकती है, जिस पर इंशाल्लाह आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे भी। बुजुर्गान जो अपने वक्त में नेक थे, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, आने वालों ने उन्हीं को पूछना शुरू किया। जैसा कि बिल्कुल इन्हीं आयतों से पिछले लेसन में हम कहानी सुन चुके, जिनको आज लोग दाता हजवेरी कहते हैं, आपको मालूम है ये अपने वक्त के कितने बड़े बुज़ुर्ग थे। इन्होंने दीन इलाही के अंदर की भी जो खराबियां थी उसको खोला, दीन इलाही के नाम पे जो मन घड़त किस्म का दीन था उसको इन्होंने ख़त्म किया। अल्लाह ने इनको उस दौर में तौहीद के लिए चुना। कशफुल माजूब के नाम पर इनकी किताब मौजूद है, जिसको मैं आज नहीं जानती तफसील से, लेकिन मेरा गुमान है कि आज उसमें भी बहुत इजाफे हो चुके। बहरहाल अपने दौर के मवाहिद, शिर्क से रोकने वाले, लोगों को अल्लाह से जोड़ने वाले, आज जाके देखिए शायद मेरा ख्याल है कि हरम के बाद सबसे बड़ा कट जो है वो इसी दरगाह पे होता है। लोगों ने बिल्कुल हरम की मत में उसके किर्द तवाफ़ करने शुरू कर दिए, बहिश्ती दरवाजे बना लिए, वहाँ हर साल जैसे हज होता है वहाँ उर्स होता है, मनो टनो अरक गुलाब से उसको धोया जाता है जैसे खाना काबा को धोया जाता है एक मौके पर, फूलों की पत्तियाँ और न जाने क्या कुछ। मैं सोचती हूँ कल क़यामत के दिन जब ये बुज़ुर्ग आएंगे तो बिल्कुल वही बात होगी जो दूसरे पारे के बिल्कुल दूसरे या तीसरे रुकू में आती है, कि ये खड़े होके कहेंगे, अल्लाह हम इस शिर्क से बेजार हैं, हम तो नहीं कह के कहते। अल्लाह ने उनके ही इखलास का शायद इनको ये बदला दिया होगा कि लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली, लेकिन लोगों ने उस मोहब्बत में एग्जेजुरेशन करके अपनी आखिरत को ख़राब कर लिया। तो बहरहाल दूसरी किस्म के माबूद के जो अपने दौर के नेक लोग होते थे, आने वाले लोग उन जैसी नेकियां तो नहीं करते थे, लेकिन उनको बड़ा समझकर, मोतबिर समझते हुए उन्हीं को वसीले बनाकर पूछने शुरू कर देते थे और सारी वो चीज़ें शुरू कर देते थे जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए। अभी शायद में इन दोनों किस्म के माबूदों की बात है, मैंने दोनों का तारुफ करवा दिया। अब चलिए ज़रा आगे देखते हैं। अल्लाह सुबहान तआला यहाँ इंसानियत के लिए एक बड़ी ही खूबसूरत मिसाल पेश करते हैं, और असल में आप देखेंगे कि इस आयत के अंदर शिर्क के इंसानी नफ्सियात पर क्या असरात आते हैं वो बताए गए हैं। बहुत गहरे असरात होते हैं, बड़ा खूबसूरत सबक है। आखिर तक आप देखते जाएंगे कि शिर्क के ह्यूमन साइकोलॉजी पर क्या नज़रियात हैं, मुशरिक की सोच कैसी होती है, मुशरिक क्यों रिस्क नहीं लेता, मुशरिक क्यों तोहम परस्त हो जाता है, वो क्यों बात बात पे डरता है, पत्ता भी खड़के तो डर लगेगा, ज़रा सा अगर हवा का झोंका भी चला तो उसको शक हो गया। और इसके बरक्स फिर अगली आयतों में हम देखेंगे कि एक मवाहिद, एक अल्लाह को पूछने वाला, उसकी शख्सियत कैसी होती है, निडर, बेखौफ। वला तखाफून अलौमतलाइम जाहिदुफिल्लाही हक्का जिहादी, कि एक सच्चा मोमिन जो होता है वो वाकई एक खूबसूरत इंसान बनता है। इस लेक्चर के एंड पे हम खुद ही इसका मुवाजना करने के इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे। तो शिर्क जो है ये इंसान की पर्सनैलिटी को मसख कर देता है। इस्लाम फितरत की पुकार एक लेक्चर है, उसमें हमने ये बात बहुत डिटेल से की है जो मैं यहाँ जुमला बोलने लगी हूँ, और वो क्या कि इंसान की जो फितरत है ना, ये तौहीद को पसंद करती है। मुशरिक जो होता है ना, वो अपनी फितरत को मस्ख करने की कोशिश करता है। आप देखिए, बड़े से बड़े बेदीन, बेखुदा, लाखुदा लोग भी मुश्किल में कहते हैं ओ गॉड, चले आज गॉड को भी गौश कर दिया, ओ गौश, ताकि ना ही नाम ले जुबान पे अल्लाह का तोच है। लेकिन वो कहाँ से आया गॉड? एक खातून जो बिल्कुल अपने आप को एथियस कहती थी, खुदा को नहीं मानती थी, एक मौके पे किसी मुश्किल में आई तो एकदम उनके मुंह से निकला ओ गॉड। तो उनकी साथी ने कहा, ये किसकी बात कर रही थी, तुम तो कहती हो मैं गॉड को नहीं मानती। कहती, पता नहीं मेरे अंदर से आवाज़ आई है। तो ये फितरत की पुकार है। शिर्क होता ही तब है जब इंसान अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल मसख कर लेता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ मक्खी जैसी जानी पहचानी और हकीर सी चीज़, हकीर हम इस नज़र में कहते हैं कि बाकी चीज़ों के मुकाबले में बड़ी छोटी लगती है, कोई उसको पसंद नहीं करता, जहाँ बैठती है वहाँ उसको उठा दिया जाता है, लेकिन अल्लाह की ये मखलूक भी हकीर नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे मक्खी के अंदर जो सिस्टम चलते हैं, तो उसको सुनने और मालूम होने के बाद खुद भी बंदा यकीन कर लेता है कि वाकई मक्खी हकीर कैसे हो सकती है। मसलन देखिए कि एक छोटी सी मक्खी है, इसकी 500 आँखें होती हैं, हेक्सागोनल इसकी आँख है, इसका लेंस जो होता है ना, ये 6 कोनों वाला होता है, इसीलिए ये जहाँ बैठती है ये चारों तरफ देख लेती है। कभी आप आजमा के देखें, मक्खी बैठी है, अब सामने से नहीं पीछे से हाथ लाएं या कोई चीज़ लाएं तो जो ही आप करीब करेंगे ये उड़ जाएगी। ये चारों तरफ से देखती है, इसका दिमाग काम करता है, ये आवाज़ को पहचान लेती है, ये हवा की लहरों को पहचानती है, इसका सेंसर इतना तेज़ होता है। इस पे एक वीडियो है। हकीकत ये है कि मक्खी जैसी कमज़ोर चीज़ की मिसाल देकर अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि तुम्हारे दुनिया के सारे ही माबूद, वो दोनों किस्म के जिसको हम देख चुके, ये मजबूरे कुल हैं। इन्नल्लज़ीन तदउन मिन दूनिल्लाह, और वो जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर। यहाँ अब आप नोट कर लीजिए कि ये दूसरी किस्म के माबूदों की बात है, जो आप बुज़ुर्ग थे, फरिश्ते थे, यानी इंसान कभी ज़िंदा थे, जानदार माबूदों की तरफ इशारा है कि तुम सारे नबियों को जमा कर लो, वलियों को जमा कर लो, फरिश्तों को जमा कर लो, ईसा को भी ले आओ, लोग उनकी भी पूजा करते हैं, और आओ इनको दावत दो कि एक मक्खी बना दें। कल यखलुकु ज़ुबाबन, हरगिज़ नहीं ये पैदा कर सकते एक मक्खी भी, छोटी सी मक्खी भी ये पैदा नहीं कर सकते। सच आज कोई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप देखिए, मक्खी तो छोटी चीज़ है, मक्खी का पर भी नहीं कर सकते पैदा, अकेले तो छोड़ो, वलविच तमाऊ लहू, सारे ही जमा हो जाए, टीम वर्क करें, कोई के चलो मैं उसका पर बनाता हूँ, कोई के मैं उसकी आँख बनाता हूँ, कोई के मैं उसका डंक बनाता हूँ, कोई के मैं उसका पेट बनाता हूँ, हरगिज़ नहीं कर सकेंगे। ये है वो आयत। जो नाजिल हुई थी, तो इस पे एक तूफान उठाया था लोगों ने कि ये कैसा कुरान है कि मक्खियों की बातें करता है, और सूरह हज की आयतें मक्की दौर की आयतें। इस पे अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में एक और चैलेंज किया था, वइन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिम मिम मिस्लिही, चौथे रुकू की आयत है सूरत बकरा में, कि अगर तुम इस बात में शक करते हो कि ये किताब, ये कुरान, ये कलाम अल्लाह के नबी पर जो अल्लाह ने नाजिल किया है, ये नबी ने खुद लिखा है, तो जो तुम भी बना लो, मुकाबला कर लो। तुम्हें ये किताब ओल्ड डेटेड लगती है, पुरानी लगती है, तुम्हें लगता है कि आज के दौर के तकाजों को नहीं पूरा करती, तो जाओ फिर ये किताब ले आओ। लेकिन नहीं कर सके। जो बात वहाँ अल्लाह ताला के कॉल के लिए थी ना, वही बात यहाँ अल्लाह ताला के फेल के लिए कर दी, कि लन यखलुकू ज़ुबाबन, हरगिज़ नहीं वो ज़ुबाब को पैदा कर सकते, बना ही नहीं सकते, ये तो उनके हाथ में ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। आज साइंस ने ये बात साबित कर दी कि मैटर मादा, जिससे सारी चीज़ें बनती हैं, ये एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इंसान, कहते हैं कि मादा ना तो बन सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। हत्ता कि मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरे अंदर से जो आवाज़ निकली, ये एक साउंड एनर्जी है, ये आपके कानों में पड़ी और इससे आपको तो हीट बनती है। जहाँ मैं बोलती हूँ ना, अगर आप यहाँ टेम्परेचर रख दें, तो बिल्कुल मेरे मुंह के करीब टेम्परेचर जो है ये ज़्यादा होगा मेरे से दूर होने की निस्बत। हमारी ये आवाज़ हीट में बदलती है। हम चूल्हे में हीट चलाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद पानी बन के भाप बन जाती है। पूरी दुनिया में ये साइकिल चल रहे हैं, हर वक्त मादा चेंज तो हो जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। अल्लाह ने 1400 साल पहले इन दोनों आयतों में ये साबित कर दिया कि ना तुम मक्खी बना सकते हो, ना रब का कलाम बना सकते हो। ये मक्खी और मच्छर ये भी अल्लाह की आयतें हैं, तुम इनको नहीं बना सकते तो बताओ तुम बड़े बड़े दावे कैसे करोगे। चलो इसको तो छोड़ दो, मक्खी तो फिर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम तो एक एटम नहीं बना सकते, एक अमीबा नहीं बना सकते। यूनी सेलुलर जानवर है अमीबा, सिर्फ एक सेल से बनता है। जो लोग साइंस पढ़ते हैं उन्होंने यकीनन सुना होगा इसका नाम। एक अमीबा नहीं को बना सकता, एक जरासीम कोई नहीं बना सकता, एक वायरस कोई नहीं बना सकता। हम उनसे मुकाबला ही कर लें तो बड़ी बात है, कहाँ बात करेंगे। तो बताओ कि जो अल्लाह जैसी बात नहीं कर सकता, वो अल्लाह जैसे काम कैसे कर सकता है। अगर तुम अल्लाह ताला की जैसी चीज़ें नहीं बना सकते, तो बताओ फिर इनके आगे जाके सजदे क्यों करते हो। और फिर वहीं यसलुब हुमुज़ुबाबु शैया, और अगर मक्खी छीन कर ले जाए कोई चीज़। अब यहाँ से जो मैंने आपको पहले बताए थे, पहली किस्म के माबूदों का तذकरा, बेजान बुत, लकड़ी के, पत्थर के, वसन, सनम, असनाम, कहा कि ये बुत तो इतने बेबस हैं कि अगर मक्खी इसे कुछ सलब कर ले, सीन लामबा इसका रूट है, सलबा, और तो मैं भी हम बोलते हैं उसकी आवाज़ सलब हो गई, तो कहा कि मक्खी इनसे कुछ ले भी जाए ना, कुछ भी, ला यस्तन किजू हुमिन हो, हरगिस नहीं उससे छुड़ा सकते। नून काफ जाल रूट है, छीन नहीं सकते। और आप इसको कई दफ़ा इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपको गर्मियों में किसी ऐसी जगह पे बैठ के खाना खाने का इत्तेफाक हुआ हो, या आम खाने पड़े जहाँ मक्खियाँ बैठी हों या मक्खियाँ उड़ती हों, इतने चुपके से आपके खाने पे आके बैठती है और आके खाना ले जाती है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, छुड़ा ही नहीं सकते। कहा तुम्हारे ये माबूद कुछ नहीं कर सकते, बताओ फिर तुम इनके आगे क्यों झुकते हो। हकीकत क्या है कि दाउफत्तालिबुल मतलूब, कितना ही बेबस ऐसा तालिब और कितना ही बेबस ऐसा जो मतलूब हो। तालिब से मुराद खुद साख्ता माबूद, जो खुद ही लोगों ने फैब्रिकेट कर लिए अपने जोम अपने गुमान के मुताबिक, और मतलूब से मुराद मक्खी। दूसरी तफसीर क्या है कि तालिब से मुराद है पुजारी, तलब कर रहे हैं ना, मुशरिक जो है, पूजने वाला, और मतलूब से मुराद इसका माबूद है। हदीस कुदसी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस आयत की तफसीर की गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, और आप जानते हैं कि हदीस कुदसी अल्फाज भी अल्लाह ताला ही के होते हैं, फरमाया इससे ज़्यादा जालिम कौन है जो मेरी तरह पैदा करना चाहता है। अगर किसी में वाकई ये कुदरत है तो वो एक ज़र्रा या एक जौ ही पैदा करके दिखा दे। ये सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल लिबास। तो क्या पता चला कि जो मांगने गया वो भी उतना ही बेबस है जिससे मांगने गया। कोई कुछ दे नहीं सकता, कोई कुछ ले नहीं सकता। अगर आज ये बातें करते हुए हम उम्मते मुस्लिमा का जायज़ा लें। देखिए, आप किसी को हिंदू कह देते हैं और आप नाक चढ़ाते हैं, ये तो बुत के पुजारी हैं। क्यों आपको हक दिया किसी ने इसका? इसलिए कि हिंदू खड़े बुत को पूजता है और मुसलमान लेटे हुए बुतों को पूजते हैं। फ़र्क क्या? शेर ऐसे पूरे। बल्कि एक हिंदू ने कहा भी कि तुम मुसलमान हमें कैसे रोक सकते हो शिरक से, और इस चीज़ को शिरक कैसे कह सकते हो? हम खड़े हुए बुतों को पूछते हैं और तुम कब्रों में लेटे हुए को पूछते हो। मैंने खुद जाके देखा और सुना भी ये बात कि हिंदू भी मुसलमानों की दरगाहों पे आते हैं। ये बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग इंडिया के अंदर उनकी कब्रें हैं, लोगों ने आज उनकी दरगाहें बना ली हैं, वहाँ मुशरिक भी आते हैं, धागे बांधते हैं, वो भी वहाँ तेल चढ़ाते और आके मन्नतें मानते हैं। इसमें वो हमारे ही साथ देते हैं, लेकिन हमारे साथ हज करना या रोज़ा रखना या नमाज़ पढ़ना, ये उनके लिए नहीं होता। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने यहाँ एक बड़ी खूबसूरत तरीके से शिर्क की बेखुनी कर दी। कभी गौर करें आप, इंसान थोड़ी सी अकल अगर इस्तेमाल करे तो एक पत्थर का बुत करे कभी क्या? और एक इंसान जो दुनिया से अब चला गया, बहुत नेक था मान लिया, बहुत करनी वाला था मान लिया, बिलफर्ज सब कुछ कर सकते थे, अब दुनिया से चले गए, आप उसकी कब्र पे जाके कैसे उसको माबूद बनाते हैं? थोड़े से मराहल तसव्वुर में लाइए जो किसी भी नेक बुजुर्ग के दुनिया से जाने के बाद पेश आते हैं। वो मरता है? मरा होगा ना। अगर हॉस्पिटल में था तो उसके मुंह से ऑक्सीजन की पाइप्स उतरी होंगी, कुछ भी हुआ होगा, फिर क्या लोगों ने उसकी आंखें बंद की होंगी? उसके दोनों पाँव को पकड़ के अंगूठों को बांधा होगा, जैसे अमूमन मैयत के साथ करते हैं, किया होगा ना? फिर लोगों ने उसके हाथ बिल्कुल सीधे करके उसको सफ़ेद चादर के अंदर बंद किया, फिर लोगों ने उसको उठा के स्ट्रेचर से तो मैयत की जो चारपाई होती है उस पर डाला होगा, फिर लोगों ने उसके ऊपर गर्म पानी, बेरी के पत्ते, कपूर मला होगा। कुछ किया उसने उस वक़्त? हिला, अपनी जगह से उठा? मेरा ख्याल है कि इंसान सबसे ज़्यादा ये चीज़ नापसंद करता है कि कोई उसके जिस्म को हाथ लगाए। आपसे बात करते हुए भी कोई आके आपके कंधे पे हाथ रख के मुंह पे, तो इंतहाई मायूब लगता है। हम तो बर्दाश्त नहीं करते कि कोई हमें करे। फिर लोगों ने उसको कफन पहनाया, सारे उसके कपड़े कटे होंगे, अगर कोई औरत थी तो उसकी चूड़ियाँ, उसके जेवरात उतरे, मर्द है तो उसकी घड़ी उतरी, फिर सफ़ेद चादरों में उसको डाला गया, उसका पेट दबाया, उसके जिस्म से गंदगी निकली, वो कुछ नहीं कर रहा, खामोश बैठा देख रहा होगा या लेटा हुआ। फिर लोगों ने उसको कफन में बंद कर दिया, उसकी डोरियाँ बंद दी, फिर लोगों ने उसको देखना शुरू किया, फिर उसको कंधों पे उठा के ले गए, उसका जनाजा पड़ा, कुछ भी नहीं किया, फिर उसकी चारपाई लाके कब्रिस्तान में रखी, कुछ नहीं किया उन्होंने, लोगों ने कब्र खोदी, आवाज़ें आ रही होंगी खुदाई की, कुछ नहीं किया, फिर दो चार लोगों ने पकड़ के उनके जिस्म को मिट्टी में डाला, सेट करा, उसके ऊपर पत्थर चुने, कुछ भी नहीं किया, कुछ कर ही नहीं रहे वो। फिर आपने लकड़ियाँ डाली, फिर आपने उसके ऊपर ईंटें चुनी, फिर मिट्टी डाली, फिर पूरी मिट्टी भी डाल दी, और जो ही वो कब्र तैयार हुई आप कहते हैं ये सब कुछ करने वाले हो गए। अगर वो करना चाहते तो क्या करते? सबसे पहले तो अपने मुंह से कफन को हटाते ना, कब्र पे रखी हुई जो ईंटें उनको तोड़ते ना कि लोगों मुझे कहाँ छोड़ रहे हो। कभी इंसान सिर्फ अकल से सोचे ना, इंसान का दिल उसको बताता है कि ये शिर्क है। लेकिन वो शख्स जो उसी कब्र के आगे सजदा करता है और आके दुआएं मांगता है कि जो मिलना है तेरे वसीले से मिलना है, जो लेना है तुझसे लेना है, आज तो लेके जाऊंगी सारे सवाली तेरे दर के, क्या क्या शेर हैं। बाज़ तो नबी सल्लम की ज़ात तक शेर कर देते हैं, आपके रोज़े के बारे में इतने मुशरिकाना शेर हैं। कभी इंसान दिल खोल के अगर ये बातें सुने, देखिए आप ये बातें अगर तासुब से सुनेंगे तो आप फ़ौरन बंद कर देंगे कि नहीं जी बस मुझे नहीं सुनना, क्योंकि बाप दादा से कुछ चीज़ें चलती हैं तो हम उसके बहुत ज़्यादा मुहाफ़िज़ होते हैं। हम जो बातें सुनते हैं ना, असल में वो हमारा अकीदा बन जाता है। और सबसे बुरी चीज़ जो लोगों को लगती है वो चेंज लगती है। बाज़ लोग सिर्फ इसलिए भी किताब नहीं पढ़ने आते कि वो तब्दील नहीं होना चाहते, खौफ आता है उनको तब्दीली से। लेकिन कभी सोचिए तो सही, कल हम भी तो कब्र में जाएंगे। मैं जाऊंगी ना कब्र में अकेली, कोई मेरे साथ होगा? जिसको खुदा ना खास्ता मैंने अगर ज़िंदगी भर पूजा या अपना पीरो मुर्शिद कहा, या जिनके नाम पे मैंने नियाजें दी और उनके नाम पे अपने आप को वक्फ कर दिया, क्या उनमें से कोई एक मुजावर भी मेरे साथ कब्र में जाएगा? तो फिर सोचो कि दाउफत तालिब वल मतलूब, इतने करनी वाले रब को छोड़कर, इतने अलकदीर अलकवी अलमालिक अलवदूद को छोड़कर इतने कमज़ोरों से मांगते हो। ये तो ऐसी है कि जैसे कोई बादशाह से मांगने की बजाय फ़कीर से मांगना शुरू कर दे। तारीख में वाक्य आता है कि एक दफ़ा एक शख्स था तो उसको कोई ज़रूरत पेश आई, तो किसी ने कहा कि बादशाह वक्त के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद कर देगा, जैसा कि अमूमन होता है। उन्होंने कहा ठीक है, वो आ गए। पता चला कि आप बैठिए इंतज़ार करें, बादशाह साहब मसरूफ़ हैं। थोड़ा वक्त गुजरा गुजरा, भाई किधर है बादशाह साहब का, वो अंदर इबादत कर रहे हैं। नेक बादशाह था वो, उसने झांक के देखा तो बादशाह नमाज़ पढ़ के या अल्लाह से कुछ दुआ मांग रहे थे। कितना टाइम गुजर गया, बादशाह दुआई मांग रहे हैं। तो इन बुज़ुर्ग के दिल में आया कि मैं कितना अहमक हूँ, उससे मांगने के लिए बैठा हुआ जो खुद किसी से मांग रहा है, तो मैं अल्लाह से क्यों ना मांग लूँ। चले गए वापस। दाउफत तालिब वल मतलूब, आज के दौर में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मारूफ होती जा रही है। आपको बताया कि हम मुसलमान अपनी नस्लों में जैसे अपना सही दीन नहीं कन्वर्ट कर पाए ना अभी तक, अब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें हैं। पिछले 8-10 साल से अब एक हवा चल पड़ी हुई है कि जिसमें आपको फील होता है कि अब वाकई इल्म का शौक आ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आप एक खूबसूरत चीज़ भी देखें कि बाकी अधियान, मसलन क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, ज्यूइज़्म, जैसे मुसलमानों के साथ दूसरे बड़े मजाहब हैं, उन्होंने भी अपनी नस्लों को अपना दीन ठीक नहीं दिया। इस वक्त बहुत तेज़ी से जो यंग्स बुत परस्त लोग हैं ना, वो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। इन्हीं में से एक शख्स हैं दयानंद, आपने उनका नाम सुना होगा, आर्या समाज को प्रेजेंट करते हैं। कहते हैं कि ये मुसलमानों के भी दुश्मन हैं, मुसलमान भी नहीं है लेकिन बुतों के बड़े दुश्मन हैं। तो किसी ने इनसे पूछा कि आखिर आप बुतों को बुरा क्यों कहते हैं, तो कहने लगे कि मुझे अपने बचपन का एक वाक्या याद आता है कि मेरा बाप पक्का बुत परस्त है। तो मैं उसके साथ एक मौके पे किसी मंदिर में गया, तो जब वहाँ गए रात हो गई तो बाप ने कहा इधर ही सो जाते हैं। कहते मेरा बाप तो सो गया लेकिन मैं नहीं सोया। तो मैंने क्या देखा कि जूँ ही रात हुई तो एक चूहा निकला कमरे में से और वहाँ जो बुत रखा था उसके ऊपर सर पे चढ़ के नाचने लगा और उसके सर पे पेशाब कर दिया। कहते उस दिन से मुझे बुतों से नफरत हो गई कि ये अपने सर से जो बुत चूहे को नहीं हटा सकता, ये हमारे काम कैसे करेगा। अल्लाह अकबर। अब अगर अगली आयत को साथ लेकर, मा कदरुल्लाह हक्का कदरी, असल शिर्क की वजह यह है कि लोग अल्लाह की कदर नहीं करते। देखिए आप कब बाहर जाते हैं, जब आप घर वालों की कदर नहीं करते। जो घर के पके खाने की कदर नहीं करता वो बाहर से रोज़ खाना पसंद करेगा। जिसको घर में नेक पाक बीवी पसंद नहीं वो बाहर गंदी औरतों के पास जाएगा। जिसको अपने माँ बाप की मोहब्बत नहीं भाती वो दूसरों से मोहब्बतों का भिखारी होता है। इसी तरह शिर्क होता ही तब है जब लोग अल्लाह का सही अंदाज़ा ही नहीं कर पाते। कदर का लफ्ज़ उर्दू में तो हम बोलते हैं ना उसकी कदर उसकी कदर, अरबी ज़ुबान में कदर का लफ्ज़ी माना होता है अंदाज़ा, कदरा, उसने अंदाज़ा मुकर्रर किया। इसी से लफ्ज़ तकदीर भी है। तो अल्लाह की कदर अल्लाह का अंदाज़ा ही नहीं किया, लोगों ने अल्लाह की वैल्यू ही नहीं पहचानी, डिवेल्यूएट कर दिया। उन्होंने समझा अल्लाह ऐसे ही जैसे कोई है एक हस्ती, हाँ बस जैसे लोग होते हैं वैसे ही अल्लाह। अल्लाह की ज़ात तो इतनी बड़ी ज़ात है कि लोग अगर उसकी असल को पा जाएं, उनके दिल थक थक करते हुए भी अल्लाह अकबर कहते फिरें, उनकी पेशानियों पे सजदे रहेंगे और वाकई वो चाहें कि हम अल्लाह के आगे झुक जाएं। शिर्क की बहुत बड़ी वजह कदर ना होना। कभी फूलों का रंग देखा आपने, कौन रंग भरता है? सब्ज़ पत्तियाँ सुर्ख गुलाब, किसने रंग दिया? खुशबू देखें, गुलाब का बीज देखें ज़रा, काला भद्दा ब्राउन, सूंघ के देखें कोई खुशबू नहीं, चख के देखें कोई टेस्ट नहीं। मट्टी में जाते उस मट्टी को ज़रा उंगली से टच करके चखें, कड़वी नमक वाली, अंदर गया पानी जो डाल रहे हैं फीका। कुछ दिन के इंतज़ार के बाद जो छोटी सी कोंपल निकली वो सब्ज़ कैसे हो गई? कुछ दिन और गुजरे तो वो ब्राउन टहनियों में बदली और हर टहनी कांटों से भरी हुई, क्योंकि जहाँ गुलाब होते हैं वहाँ दुश्मन भी ज़्यादा आते हैं, हिफाजत भी चाहिए थी। और फिर वो फूल खिला, खुशबू से पता चल गया कि फूल खिल गया। कोई पीला, कोई नीला, कोई सुर्ख, हर रंग का गुलाब मिलता है अब तो, कहाँ से आया? कभी ख़ौर नहीं करता इंसान। हकीकत क्या है कि माँ कदरुल्लाह हक्का कदरी। लोग अल्लाह की कदर ही नहीं करते। एक एक चीज़ को देखें। सुबह मैं केला खा रही थी, आदत है गौर करने की। आज जहाँ बैठी खा रही थी वहाँ कुछ और काम नहीं था, मैं उस पर गौर शुरू हो गई। पहले तो केला मेरे हाथ में देख के जो मेरे साथ थी उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल लगता है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था प्लास्टिक है, बल्कि गौर से देख के मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि असली है, वरना मैं भी समझती कि नकली है। फिर मैंने उसको जब पकड़ा तो मुझे फील हुआ कि एक बड़ी नरम सी चीज़ मेरे हाथ में है ना। मैंने ऊपर से उसकी डंठी तोड़नी चाहिए तो थोड़ी सी सख्त होती है। मैंने हल्का सा इसके नाखून के साथ उसको करके बाहर हल खोला। अब देखिए बाहर से बिल्कुल पैरट ग्रीन कलर और अंदर से बिल्कुल खूबसूरत ऑफ वाइट लेमन कलर का केला, नरम, कोई उसमें हड्डी नहीं, कुछ नहीं। फिर आप उसको तोड़ना चाहें, टूटे कैसे मुड़ा हुआ है। कभी आपने गौर किया कि केले यूं क्यों होते हैं झुके हुए, सीधे क्यों नहीं होते? कहीं कहीं आप बाहर जब सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ लंबे केले सीधे होते हैं, लेकिन अमूमन आप केलों का गुच्छा देखें तो कैसा होता है, गोल होता है ना, आजसी झुकाओ। ये अल्लाह ने उसका बैलेंस रखा हुआ है। अगर केले सीधे होंगे ना तो ज़्यादा गलेंगे, रखने में नुकसान है। हैंगर भी मिलता है जिस पे लोग लटका देते हैं केले, खोंटी पे लटकाने वाली बात है। हिफाजत के लिए अल्लाह ने इसका ये कवर बनाया। फिर मैंने उसका जो कवर था ना, मेरे साथ जो बैठी थी, मैंने उन्हें कहा कि देखें ज़रा इसके छिलका जो है ना, कि बिल्कुल उसके अंदर यूं आड़ी पतली पतली लाइनें थी, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे ये आपके डेस्क रखे हुए ना इस तरह सीधी। फिर उसके बाद उसमें लंबी लाइनें थी। फिर मैंने कहा देखें कि इसके अंदर ये लाइनें किसने डाली। फिर उसके अंदर आप देखते हैं ना बीच में ब्राउन फाइबर होता है, धागा, जो कभी कभी केले के साथ भी आपके लग जाता है। फिर उसके बाद जो उसका छिलका था, सुबहान अल्लाह, मैंने उसको फील किया तो बिल्कुल ऐसे लगा कि बड़ी कीमती चीज़ को जब आप शिपिंग करते हैं ना उसकी, तो आप उसके बाहर वो फोम सा रखते हैं कि ये ख़राब ना हो, स्टीरियोफोम होता है, कभी प्लास्टिक का होता है। तो मैंने उसको यूं किया ना तो वो बिल्कुल ऐसे दबा ना, तो मैंने कहा देखें ये अल्लाह ताला ने इसको पैक कितना खूबसूरत किया। वाकई पैडिंग थी, जैसे वेलवेट कपड़ा मोटा होता है, इतना मोटा उसका छिलका था। अल्लाह ने हिफाजत के इंतज़ाम किए। कितनी दफ़ा केला खाते हैं, लेकिन माँ कदर अल्लाह हक्का कदरी, सोचते भी नहीं कि अल्लाह ने कैसे ये बनाया। हो रहा है, आ रहा है, गुच्छों के गुच्छे आ रहे हैं, खा रहे हैं, खाएंगे केले, बस चाट बनेगी। सिर्फ फ्रूट चाट बनाते हुए आप अल्लाह को सोच लें तो कभी बंदे की निगाहें किसी दूसरे में नहीं लगती। और इतना बड़ा होने के बावजूद लकवियुन अजीज भी है, ताकतवर भी है। ये नहीं कि इतने काम करके उसकी ताकत ख़त्म हो गई है। दो आयतें हैं, इन दोनों को हम सामने रखते हुए थोड़ा सा मवासना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। एक तरफ आप लिख लें मवाहिद और एक तरफ लिख लें मुशरिक। मवाहिद वो जो एक अल्लाह को मानता है, ला तखाफून लौमत लाइम, बस अल्लाह के मामले में किसी से नहीं डरना। वो अल्लाह को भी मानता है, अल्लाह की भी मानता है, उसकी सारी मोहब्बतें अल्लाह के साथ हैं। वल्लज़ीना आमनू शद्दु हुब्बलिल्लाह की तरह। और मुशरिक वो है जो किसी न किसी किस्म का शिर्क करता है। अब आप ज़रा समझिएगा इस बात को कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी का हदफ बना लेता है ना, उसी के मुताबिक कोशिश करता है, टारगेट बनाता है ना, वही काम करता है। बस आप सब ने टारगेट बनाया कि आपने कुरान सीखना है, तो आप रोज़ आ रहे हैं ना। हमारे पास एक हदफ बना हुआ है कि ये कोर्स हमने तब तक पूरा करना है, तो हमें करना है ना। अब जिस तरह का हमारा गोल होता है ना, वही हमारा रोल होता है। ये बात हम अक्सर मीटिंग्स में भी करते हैं कि हमारे गोल्स हमारे रोल को डिफ़ाइन करते हैं। जितना बड़ा हदफ होता है उतनी बड़ी कोशिश है। आम खातून के तौर पे इसकी ये मिसाल है कि आप रोज़ अपने दो बच्चों और शौहर का खाना पकाती हैं, तो आप बस वही मुश्किल से पका के बैठती हैं शाम तक। और जिस दिन आपको पता चलता है कि आज 20 लोग खाने पे आ रहे हैं, तो आप उस दिन 20 लोगों का खाना पका लेती हैं। जितना शॉर्ट हमारे पास टाइम होता है उतना हम जल्दी काम करने लगते हैं। तो इंसान की जो एफर्ट्स है ना, वो उसके हदफ के मुताबिक होती हैं। इसीलिए आप देखें जब हम काम में लगे होते हैं हमें थकन नहीं होती, जब काम करके बैठते हैं फिर कहते हैं हाय इतना थक गए थे, लेकिन एक जोश होता है हम काम कर लेते हैं। इसी तरह आप देखिए कि अगर हम सबसे पहले तौहीद परस्त मवाहिद शख्स को देखें तो उसका हदफ क्या है, अल्लाह की अबूदियत। आप कह लें कि अल्लाह की ज़ात उसका मकसूद है, उसका मतलूब, उसका महबूब अल्लाह की ज़ात है। वो जो काम करता है ना वो अल्लाह के लिए करता है, हर बात में मुझे अल्लाह को खुश करना है। अबूदियत रब ये बुलंद तरीन हदफ है। हर काम करेगा वो अल्लाह को खुश करेगा, वो अल्लाह को राज़ी करना चाहेगा, डरेगा तो अल्लाह से डरेगा, कोशिश करेगा तो अल्लाह के रास्ते में करेगा, अल्लाह ताला की पकड़ से डरेगा, बचेगा। ऐसा शख्स बहुत ऊपर उठ के जाता है। अब जो जितना ऊपर जाता है ना उस हदफ को पाने के लिए वो उतनी मेहनत करेगा। कुछ लोग हैं वो सिंपल मैट्रिक करके फारिग हो जाते हैं, कुछ साइंस में करते हैं क्योंकि उनको डॉक्टर बनना है। बहुत बड़ा फ़र्क होता है, इस तजुर्बे से गुजरी हूँ मैं। मुझे अंदाज़ा होता है कि साइंस स्टूडेंट्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ और उनके स्कूल कॉलेज में आने जाने के औकात और तरीक़ेकार में बहुत फ़र्क होता है। आपका हदफ है, आपको पढ़ना है, आपको मोटी किताबें लगें, मुश्किल लगें, आपको एनाटॉमी मुश्किल लगे, आपने पढ़नी पढ़नी है, कर लेते हैं, फिर आप पढ़ भी लेते हैं। और कुछ हैं वो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेते हैं। तो जो लोग सिर्फ अल्लाह को मकसूद बनाते हैं ना, उनके अंदर फिर कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं, उनका इखलाक, उनका किरदार आला होता है, वो वाकई इस दुनिया में आने का एक बड़ा मकसद लेते हैं। आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि जैसे बेल होती है ना, छोटी छोटी बेलें होती हैं, आप किसी एक रस्सी के साथ उस बेल को छत की तरफ बांध दें तो क्या होता है, जहाँ तक रस्सी जाती है ना, वहाँ तक वो बेल पहुँच जाती है। और कुछ बेलें हैं उनको आप रस्सी ना बांधे, वो बेचारी ज़मीन पे फैलती रहती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो इंसान अल्लाह को अपना हदफ बनाता है ना, टू प्लीज़ अल्लाह, वल्लज़ीना आमनू शद्दु हुब्बल्लाह, मुझे अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह से मोहब्बत करनी है, फिर वो ऊपर उठता है, उसकी निगाहें ऊपर लग जाती हैं। आप उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं ना नस्बुल ऐन, ज़रा सोचें इसको तोड़ के लफ्ज़ को, नसब करना कहते हैं गाड़ना, ऐन आँखों को, नस्बुल ऐन के कि आप जिस पे आँखें गाड़ दें। वैसे मैं यहाँ बैठी ना, ये देखें ऊपर लाइट लगी ना, मैं इसको देख रही हूँ, अब मेरी आंखें इस पे गड़ गई और मुझे आप में से पीछे सफ़ों में बैठे लोग नहीं दिख रहे, सिर्फ एक हल्का सा हेवला है जो मेरे आगे या आप लोग करीब बैठे हुए हैं, और अगर मैं बिल्कुल ऊपर करूँ तब तो मुझे आप में से कोई भी नहीं दिखता। ये है तौहीद, अपनी निगाहें अल्लाह पे लगा लो, वो अर्रज़्ज़ाक़ है, रिस्क वो देगा, औलाद वो देगा, माल वो देगा, इज्जत वो देगा, दौलत वो देगा, लोगों के दिलों में भी मोहब्बत वो डालेगा। जब ये कैफियत आती है ना, तो फिर दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। फिर बंदे को नहीं परवाह रहती कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोगों की नज़रों में मेरा क्या मुकाम है, लोग मेरे ये काम करने से खुश हैं कि नहीं, मेरा ये पहनना लोगों को खुश कर रहा है कि नहीं, मैं ये खा रही हूँ, पी रही हूँ, पहन रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, किसको अच्छा लगता है। मेरे पास एक यंग बच्चियों की क्लास थी, तो मैंने उसमें ड्रेसिंग पे बात हो रही थी उस दिन, जो हमारा टॉपिक था, तो मैंने उन्हें कहा कि आप कुछ भी पहने, कहने कि हम क्या करें, क्या पहने, क्या कर सकते हैं, नहीं, मैंने उन्हें कहा कि आप कहीं भी जाती हैं ना, कुछ भी पहने, तो अमूमन आप साथ वालों से पूछती हैं ना, ठीक है, कैसी लग रही हूँ, अच्छी हूँ, कहती हाँ, तो मैंने कहा आप चंद लम्हे के लिए घर से निकलने से पहले अल्लाह ताला से पूछें कि अल्लाह ताला कैसी लग रही हूँ, ये है इस्लामिक ड्रेस कोड। फिर बंदा अल्लाह पे नज़रें लगाता है तो वाकई दूसरों की नज़रों से बेनियाज हो जाता है। चलिए इसको हम साथ रखते हैं, अभी दूसरी तरफ चलिए, मुशरिक, अल्लाह के माँ सिवा जो लोग दूसरों को हदफ बनाते हैं ना, वो अमूमन तीन मुख्तलिफ दर्जों पे होते हैं। नंबर वन, सबसे लीस्ट लेवल, किसी चीज़ को पूछने का वो क्या है, खुद को पूछना, सेल्फ वर्शिप। कुरान पाक में दो जगह यह आयत आती है कि बदतरीन है वो शख्स, अफराई तमन तखज इलाखहु हवाहु, क्या तूने देखा है उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया। सूरह फुरकान में भी आने वाली है अगली सूरतों में आयत, अपने नफ्स को पूछना, सेल्फ प्लीजर, ख्वाहिशात, मेरी ज़ात, मैं, मुझे मिल जाए फ़ायदे, दुनिया के फ़ायदे, मुझे कंफर्ट मिले, मुझे माल मिले, यानी हर वक्त अपने आप को लगाना। इसी को कुरान पाक में सूरह अनफाल में एक ऐसे शख्स से निस्बत दी है कि जिसको अल्लाह ने इल्म भी दिया था दुनिया का, दीन का, लेकिन अखलदा इलल अर्ध हो गया, ख्वाहिशों में चला गया। बाज़ लोग दीन पढ़ के भी ख्वाहिश परस्त हो जाते हैं, अल्लाह हमें उनमें ना करे। अब सोचें कि सबसे लीस्ट लेवल दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का क्या, कि आप अपनी ज़ात को हदफ बना लें, और अफसोस की बात है कि जितना घटिया ये दर्जा है ना, उतने ही ज़्यादा लोग इसी को अपनाए हुए हैं। आप कहेंगे बहुत बड़ी बात कही आपने, नहीं, दलील मौजूद है, सुबह से शाम तक इंसानियत किसके गिर्द घूम रही है। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि ये जायज़ है कि नाजायज़ है, इस वक्त जायज़ नाजायज़ हराम हलाल की बात नहीं, इस वक्त ज़िंदगी गुजारने के स्टाइल पे बात हो रही है कि इंसानों में मेजॉरिटी अपने लिए जीती है। पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, अपना कैरियर, कमा रहे हैं तो इसलिए कि खाना है पीना है, मना भी नहीं, आप अब ये मत लें कि पढ़े ना खाए ना, ये बात मैंने फिर वाजे कर दूं कि हलाल हराम की नहीं हो रही, स्टाइल ऑफ लिविंग बता रही हूँ। हर वक्त ख्वाहिशात, हर वक्त घर मिल जाए, सजा लें, गाड़ी मिल गई, क्या लिया, लोहा लिया। स्टील को आपने रंग करके कहा ये बहुत कीमती बन गया, धात है लोहे, उसको आपने कहते हैं कि ये सोना है। सारा वक्त इन्हीं चीज़ों में इंसान खोता है। क्या कर क्या लिया, एक ख्वाहिश, एक घर बन गया, एक गाड़ी बन गई, आपने कमा लिया। कागज़ के नोट हैं, आप उसको रुपया कह लें, आप उसको डॉलर कह लें, आप क्रोन कह लें, आप जो मर्जी कहते रहें, सारा वक्त अपनी इस दुनिया दुनिया। और याद रखें कि जब अपना नफ्स बुत बनता है ना, इसके कंफर्ट, लग्जरियस लाइफ, कंफर्ट्स चाहिए, नरम गद्दे, नरम बिस्तर, गरम, ये अपनी जात के लिए है ना। आप सोचिए, दिन से रात तक हम अपने इस जिस्म को ही तो सजाते हैं, आराम इसका, भूख इसकी, प्यास इसकी, खाना इसका, पीना इसका, और अंदर जो रूह रखी हुई थी उसको बेचारी को 1 घंटा भी कुरान नहीं सुनाते, उसके लिए 15 मिनट भी नमाज के लिए वक्त नहीं निकालते। तो पहला दर्जा क्या है, अपने लिए जीना, ये भी बड़ा मुश्किल है। लोगों को देखें, 6 बजे सुबह उठ के, फजर पे तो नहीं जाते लेकिन स्कूलों और कॉलेजों और जॉब्स के लिए निकल रहे होते हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है, लोग जा रहे हैं, ये खुद को पूज रहे हैं, ख्वाहिशात। कुछ लोग इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, एक दूसरा हदफ मुकर्रर करते हैं, और वो है हुब्बे वतनी, कौमियत, नेशनलिज्म, अपने मुल्क से मोहब्बत का बुत। ये पहले से थोड़ा सा ऊपर है, पेट्रियाटिक कहते हैं जिसको इंग्लिश में। ये लोग बड़े मुहिब्बे वतन होते हैं, इनको अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत होती है। वैसे तो अब ऐसे लोग कम ही दिखते हैं, लेकिन मैंने नॉर्वे में देखा है कि नॉर्वे वालों को अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, और सुना भी है कि ये लोग उस शख्स को पसंद ही नहीं करते जो टैक्स कम कर दे, क्योंकि हमारा मुल्क ख़राब होगा, हमारा मुल्क गंदा होगा। लेकिन आपको ऐसे नाम मिलेंगे जैसे कमाल अतातुर्क, तुर्की के हुक्मरान थे, बड़ी मोहब्बत थी उनको अपने मुल्क से, इतना उन्होंने काम किया, खुद गलियों में ले लेके ब्लैक बोर्ड फिरा करते थे, लोगों को पढ़ाते थे। इनके दौर में इनका मुल्क बहुत कामयाब हुआ, मुल्क को संवारा, सजाया, साफ़ सुथरा किया। इसी तरह हिटलर, दुनिया उनको कुछ भी कहे लेकिन जर्मनी के लिए हिटलर बहुत अच्छा था। ऐसे लोग सारी दुनिया में जुल्म करेंगे, अपने मुल्क में नहीं करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का माबूद उनका मुल्क बनता है। अपने मुल्क की सतह पे जीते हैं, उसके लिए काम करते हैं, एफर्ट्स सारी मुल्क को खुश करने की है। हम जैसे लोग दूसरे मुल्कों में रहने वाले कहते हैं 14 अगस्त को मेला कर लें, ये है हुब्बे वतनी, और उस मेले में जो गाना नाच कर लो, लोगों को बताओ कि हम भी तुमसे कुछ कम नहीं है, हम बड़े पेट्रियाटिक हैं। वैसे पाकिस्तान की जड़ें काटेंगे लेकिन बाहर बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा बुराइयां पाकिस्तान की करेंगे, लेकिन कहेंगे कि हैं हम पाकिस्तानी। बहरहाल, इससे ऊपर उठ के एक तीसरा दर्जा होता है, हदफ नस्बुलाइन, और वो क्या है, ह्यूमेनिज्म, जिसको आप इंसानियत के लिए जीना कहते हैं, ह्यूमैनिटी की कॉज। आजकल इसका भी बड़ा गुरगुला है, लोग कहते हैं बस ह्यूमैनिटी को पहचानो, छोड़ो दीन को, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, बस बींग अ ह्यूमन लोगों से काम करो। अब ऐसे लोग जो ह्यूमनिज्म होते हैं, आप कह लें कि ये उससे अच्छा दर्जा है। आप देखिए, इन तीनों दर्जों में सिर्फ अपने लिए जीना, उससे मुल्क के लिए जीना बहुत अच्छा है। मुल्क के लिए सिर्फ जीने की बजाय नेशन वाइड, इंटरनेशनल लेवल पे इंसानियत के लिए जिए, ऐसे काम करें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, बहुत अच्छा है। लोगों का फ़ायदा ही होगा ना इसमें भी, नुकसान नहीं होता। लेकिन इन लोगों का मसला ये है कि ये इंसान दोस्त होते होते इंसान परस्त बन जाते हैं। आप UNO देख लें, बड़े बड़े नाम देख लें, ह्यूमन राइट्स के नाम पे जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, बाज़ दफ़ा उसमें इस्लामिक लॉज को पीछे कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि इंसानों की मोहब्बत उनके अंदर आने लगती है। नतीजा क्या हुआ कि ये ह्यूमैनिटी पे आ गए। चलिए, आप इमेजिनेशन में लाएं कि 4 सीढ़ियां हैं आपके सामने। पहली सीढ़ी ख्वाहिशात की, कुछ ख्वाहिशात पे पहली सीढ़ी पे खड़े हो गए, कुछ उससे ऊपर आए तो कौमियत पे आ गए, कुछ उससे ऊपर आए तो ह्यूमैनिटी पे आए, और चौथी सीढ़ी है अबूदियत रब की। अब आप इमेजिन करें कि एक मवाहे जब अबूदियत के दर्जे पे आता है, तो क्या बीच में ये 3 दर्जे नहीं आएंगे? इसीलिए फिर जो एक अल्लाह से जुड़ता है ना, वो अपने लिए भी काम करता है, वो अपनी भी ज़रूरियात पूरी करता है, वो खाता है, खिलाता है, वो बीवी, बच्चे, शौहर, घर बार, जॉब सब करता है। ये हो ही नहीं सकता कि चौथी सीढ़ी पे आने से पहले आप पहली से ना गुजरें। ला मुहाला अपने मुल्क के लिए मुखलिस होता है, वो टैक्स चोरी करने वाला नहीं होता, वो अपने मुल्क को नुकसान दे के अपने आप को फ़ायदा देने वाला नहीं होता, और ऐसा बंदा कभी हो नहीं सकता कि इंसानों के हकूक़ पूरे ना करे। तो ये है वो बेस्ट लेवल जो बंदे को सब सिखाता है। तौहीद है वो चीज़ जो बंदे को सबके हकूक़ अदा करने के काबिल करती है। जो अच्छे अख़लाक का मालिक नहीं है ना, जिसकी ज़ुबान गंदी है, जो चुगलियाँ खाता है, जो ताने देता है, जो बुहतान करता है, जो माल में खुर्द बुर्द करता है, मान जाएं कि ख़राबी उसकी अबूदियत में है, वो अल्लाह का नहीं बना। जो सच्चे मानों में अल्लाह का बनता है, उस वो तो नबियों जैसा इखलाक अपनाएगा। अंबिया कराम कभी आप सोच सकते हैं कि अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बजाय लोगों से भीख मांग रहे हो? क्या कभी किसी नबी का तसव्वुर आता है कि अपने मुल्क से मुखलिस ना हो? क्या उनके बारे में सोचते हैं कि वो इंसानियत के दुश्मन हो? नहीं, अल्लाह के नबी को तो कहा गया कि रहमतुल आलमीन, आप तो इंसानों जानवरों के ऊपर भी आप मेहरबान थे। तो सारी बात का खुलासा क्या निकला कि अगर हम अपना हदफ बुलंद रखेंगे, निगाह बुलंद होगी। वो एक शेर भी है ना कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज। जिनकी नज़रें अल्लाह पे लग जाती हैं ना, वो लोग फिर वाकई हकीकत में इंसानों के भी हकूक देते हैं। आज अगर आप चाहते हैं ना कि इंसानियत दुनिया में चैन से रहे, अमन के पयाम्बर बने, अगर पीस मेकर बनना चाहते हैं, आप अगर दुनिया को सिखाते हैं ना कि इधर सबको हकूक मिले, तो सबको अल्लाह से जोड़ दें। जो अल्लाह से जुड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि वो सोशल वर्क पे सिर्फ गरीबों के हकूक दे, वो बाकी भी सारे काम करेगा। और जब वो करेगा तो हकीकत में फिर दुनिया में अमन आएगा। बस दफ़ा होता क्या है, एक छोटी सी बात करके हम अगली आयत पे चलेंगे, और वो क्या कि बस दफ़ा हम कहते हैं नहीं जी, हम तो सिर्फ अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, मसला हम अल्लाह के लिए ये काम कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो अल्लाह के लिए पढ़ा रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं तो अल्लाह के लिए बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह के लिए बना रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो चौथी सीढ़ी नहीं, आप पहली पे खड़े हो चुके होते हैं। कैसे कि आगाज़ आप अल्लाह के नाम पे करते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपका मकसद वो इदारा बन चुका होता है, वो जमात बन चुकी होती है। जब इदारे या इंसान हमारे मकसद बन जाते हैं ना कि बस इनको प्रमोट करो, इनको बड़ा करो, इनको खुश करो, फलां शख्स होगा तो मैं ये काम करूँगी, बस इनको खुश करना है, सामने कोई आया तो काम कर लिया, सामने ना आया तो ना किया। दौफत तालिबु वल मतलूब, आप नेकी का काम भी जब तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। मेरी किसी से बात हो रही थी ऑनलाइन पे, जो काम करते हैं साथी, तो बहुत दिन से कुछ रابطہ कमज़ोर था, तो कहने लगी कि उस्ताजा जब आपसे बात नहीं होती तो हमारा लेवल डाउन हो जाता है, हमें ऐसे लगता है कि हमारी आवाज़ का ही रابطہ है आपसे, और वो नहीं होता तो हमारी, जिसको कह लीजिए कि काम करने की सलाहियत कम होती है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये तो कभी नहीं होना चाहिए, मैं कब तक रहूँगी आपके साथ? काम वही करेगा जो खुद से करेगा, सेल्फ इनिशिएटिव जो लोग होते हैं ना, जो खुद अंदर से करते हैं और जो अल्लाह के लिए करते हैं। इन अल्लाह हय्युन ला यमूत, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैली थी ओहद के मौके पे, तो क्या बात कही थी कि लोगो, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ भी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय एक रसूल के, कद खलत मिन कबली है रसूल, उससे पहले भी कई रसूल आए। अफ़ाई मात अव कतिलन कलब तुम अला अकाबिकुम, अगर वो मर जाएं या मार दिए जाएं तो क्या अपनी एड़ियों पे फिर जाओगे? और यही वो मौके थे जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी की वफ़ात के मौके पे यही बात तो कही थी कि मन का नयाबुदुल्ला फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, लोगों जो अल्लाह के लिए काम करता है, जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह तो ज़िंदा है, वो तो नहीं मरेगा। और वमा का नयाबुदु मोहम्मद, और जो मोहम्मद के लिए इबादत करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो याद रखे फ़इन्न मोहम्मदुन क़दमात क़दमात क़दमात, तो याद कर ले, जान ले कि मोहम्मद अफौत हो चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम वाकई अब अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़ें। फिर आप दिन में भी काम करेंगे, रात को भी करेंगे, अंधेरों उजालों का फ़र्क नहीं रहेगा, गर्मी सर्दी में करेंगे, दुख सुख में करेंगे, हर हाल में करेंगे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात देख रही है। अब ये सारे काम होने कैसे हैं, इसका इजहार हमें अगली आयत में मिलता है। ये दो आयतों की तिलावत सुन के आगे चलते हैं।
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ